ओम शांति। एक राजा होता है और उसके पास अपने पूर्वजों की दी हुई एक विरासत होती है, एक तलवार होती है, एक ऐसी तलवार जिसने कभी हार देखी ही नहीं थी। वो उसको अत्यंत प्रिय थी और उसको बहुत अच्छे तरह से संभालता भी था। उसने एक अच्छा सा संदूक बनवा लिया था लकड़े का और उसके अंदर वो उस तलवार को रखता था ताला लगा के, क्योंकि राजा तो सुखी था, बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ी सेना थी, कोई चांस ही नहीं था कि शत्रु हमला करे। तो एक दिन अचानक उसके महल में वेशांतर करते हुए एक शत्रु का घुस जाता है और वो उस पर अचानक हमला बोल देता है। अब राजा को तलवार याद तो आई लेकिन वो चाबी नहीं मिल रही है आए वक्त पे, तो क्या फायदा ऐसी तलवार का कि जिसने कभी हार ही नहीं देखी हो। उसी तरह ज्ञान को भी तलवार कहा जाता है। हमारे पास वो विरासत स्वयं परमपिता शिव परमात्मा ज्ञान के सागर उन्होंने दी हुई है, लेकिन उसमें न योग का जोहर है और वो कई तालों के अंदर पड़ी हुई है। वो मन के ऊपर जो ताले लगे हुए हैं वो ऐसी कुछ बातें हैं जिसका हमने उस संदूक बना के रखा है। उसके अंदर है ज्ञान पड़ा हुआ है अंदर, लेकिन वो सही समय पर निकलता ही नहीं है, उसका यूज ही नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं है। तो भाषण की शुरुआत ऐसे दिलचस्प होनी चाहिए सामने वाले को आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर उस सभा को अपना बना लेना है। फिर उसके लिए आपको कौन सी कहानी सुनानी है, कौन सा चुटकुला सुनाना है या कौन सा गीत होना चाहिए, बस पहले 5 मिनट होते हैं, उसी के ऊपर आपका अगला भाषण सुनना है या उठ के जाना है या तालियां बजानी है या सामने वाले वक्ता की खिल्ली उड़ानी है। वो सब फिर श्रोता को कुछ करना नहीं होता, वो सामने वाले अपने आप करते हैं। तो भाषण दिलचस्प कैसे हो, प्रभावशाली कैसे हो, इसके लिए बाबा की रोज हमें डायरेक्शंस मिलती है। बाबा मम्मा ने सिखाया, दीदी दादी ने भी सिखाया कि भाषण कैसे करना है। लेकिन ये भाषण हमें करना क्यों है, क्या ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी है जो भाषण करना है। दुनिया में भी भाषण किए जाते हैं। एक राजनेता भाषण करता है खुद सी पाने के लिए, तख्त पाने के लिए। एक आतंकवादी भाषण करता है आतंक फैलाने के लिए। एक सेनानी भाषण करता है अपने देश की सेना के अंदर वो वीर रस पैदा करने के लिए, वीरता दृढ़ता बढ़ाने के लिए। वो कुछ उनसे प्रतिज्ञा करवाता है। हम सब ने देखा है कि एक शूर सेनानी होता है तो वो क्या करता है, ऐसा धुआंधार भाषण करता है, फिर अपनी ही कटियार निकाल के अपनी ही उंगली काट के प्रतिज्ञा करता है कि जो मेरे साथ है आप भी अपना खून बहाओ, करना है या मरना है, ऐसी बातें वो बोलता है। तो भाषण क्यों करना है, तो मम्मा बताती है कि ये शिव बाबा का फरमान है, हमें भाषण करना है। क्या है ये, शिव बाबा का फरमान है। जितना हम इन ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना ही ये ज्ञान धन बढ़ेगा। और मम्मा ने ये भी कहा कि इससे हमारी अवस्था भी बढ़ेगी। जैसे मानो कोई उदासी आई हुई है, हाँ खुद से ही कुछ गलती भी हुई है, तो अब इस गलती से, इस उदासी से बाहर निकालने के लिए भी दादी अभी क्या करती थी, कि जाओ आप म्यूजियम में जाकर प्रदर्शनी समझाओ, जाओ किसी को कोर्स कराओ। अब खुद की अवस्था नहीं है, खुद ही अशांति है, तो हम दूसरे को शांति का पाठ कैसे पढ़ाएंगे? तो लेकिन इनका कहना यह था कि अगर हम दूसरों को सुनाएंगे तो अपने आप स्मृति आएगी कि हाँ मैं इस स्थिति में स्थित हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। तो ये बातें खुद को ही रिवाइज हो जाती है और सामने वाले के साथ साथ खुद का भी एक रियलाइजेशन होता है। तो भाषण की शुरुआत के 5 मिनट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि श्रोताओं को अपना बना के रखना और उनके दिलों पर राज करने के लिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट्स हम देखते जाएंगे कि बाबा ने कौन कौन सी बातें कही है। अभी कुछ दिन पहले साकार मुरली में आया था कि कोई प्यासा आपके दर पर आया है और जैसे कि आप उसको लात मार रहे हो, अगर आप उसको किसी आत्मा को दर पर आए हुए घर में आए हुए आत्मा को ज्ञान नहीं दिया, परमात्मा का परिचय नहीं दिया, जैसे कि लात मारने जैसा हो गया किसी प्यासे को। तो बाबा ने कितने गंभीरता से इस बात को लिया है कि हमें इस मुख द्वारा जो ज्ञान मिला हुआ है वो इस मुख द्वारा हमें वो बांटना भी है। तो वो सामने वाले को नया भी लगना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ ये तो है ओम शांति वाले, नहीं ये तो आत्मा परमात्मा सुनाते रहते हैं। तो सामने वाले को वो बात नई भी लगनी चाहिए। तो उसके कुछ पॉइंट निकाले हुए हैं। तो पहला पॉइंट है कि सबसे अच्छा वक्ता सबसे अच्छा श्रोता होता है। सबसे अच्छा वक्ता वही होता है कि जो अच्छा श्रोता है। अपने प्रिय वक्ता को वो केवल देखता ही सुनता ही नहीं है, तो देखता भी है कि उनके हाव भाव क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, और उनसे वो सीखता है। कि जैसे हम देखते हैं यज्ञ में इतने जो बड़े बड़े स्पीकर्स है, दादिया है, हर एक की अपनी अपनी एक स्टाइल है, वैरायटी है, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे म्यूजिक म्यूजिक में होते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, वैसे इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं। अभी ये जो क्लास है विद अनुभव भी होंगे, तो मैं ज्ञान सरोवर में एक बारी देख रहा था, हारमोनी हॉल में विदेशियों का क्लास हो रहा था और अपने एक बड़े स्पीकर है वो विदेशियों के सामने बता रहे थे। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज वो मैं पहली बार देखा, बाबा एंड आई, बाबा एंड आई, कम एंड पाइंड। तो इस बॉडी लैंग्वेज से मैं तो वहां हंस पड़ा, लेकिन वो विदेशी इतने भावना से उस बात को सुन रहे हैं। बात केवल शब्दों की और हाव भाव की नहीं है, बॉडी लैंग्वेज की नहीं है, उसके अंदर भावनाएं भी, उस सामने बैठे हुए श्रोतागणों की भी और सुनाने वाले की भी। मैंने पहली बार उस शब्द को समझा, कम माना ऐसे नजदीक आना है और कैसे बाइंड होना है। वंडरफुल कि ये जो हमारी बताने की जो तरीका है और बॉडी लैंग्वेज, इसका तालमेल होना बहुत आवश्यक है। तो क्या करता है अच्छा वक्ता, सिर्फ सुनता नहीं है तो देखता भी है अपने जो प्रिय वक्ता है उसको। दूसरा पॉइंट है कि अच्छे वक्ता के पास सच में बोलने के लिए कुछ न कुछ होता है, अंदर में पड़ा हुआ होता है, और उसको जो टॉपिक मिला हुआ है, विषय मिला हुआ है, उसकी पूरी जानकारी उसके पास चाहिए। जो टॉपिक मिला है वो पहले खुद को क्लियर होना चाहिए कि इस टॉपिक का मीनिंग क्या है, तभी तो वो दूसरे को समझा पाएगा। तीसरा कि पर्याप्त तैयारी से ही भाषण प्रभावशाली होगा। आपको कौन सा भाषण देना है, स्कूल में बच्चों के सामने देना है या किसी समारंभ में, उद्घाटन समारंभ में आपको निमंत्रित किया गया है, आपका निमंत्रण पत्रिका जो है उसके ऊपर आपका नाम डाला हुआ है, तो उस समय कौन सा भाषण करना है, कोई दुखद घटना घटी हुई है और वहां पे आपको सांत्वना देने जाना है, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उनके सामने कैसे बोलना है। नहीं, हम तो बिके तो जाते नहीं शादी में। हाँ, तो किसी को बधाइयां देनी है। हाँ, कुछ समारोह में हम जाते नहीं है और वहां जाने की हम पर नौबत आ गई तो वहां भी हमारी तैयारी चाहिए। हाँ, गए आप शादी में अरविंद भाई और बताइए अब क्या भाषण देंगे वहां पर। तैयारी तो चाहिए। फायदे नुकसान आप वहां, तो फिर तो फायदे क्या है नुकसान क्या है, सामने वाले की मतलब की बात भी हमें बोलनी है। खुद सिर्फ अपनी ही बड़ाई करते रहेंगे, खुद के ही अनुभव सुनाते रहेंगे कि जो सामने वाले को उसका कुछ फायदा ही नहीं है। आप जिस टॉपिक पर बोलने जा रहे हैं उसके फायदे और नुकसान भी वहां पर गिनाने हैं। पर्याप्त तैयारी होनी चाहिए कि हम कौन से स्थान पर है, समय कौन सा है, दोपहर का समय है, सबको भूख लगी हुई है, अब उनको बस निकलना ही है, तो ऐसे समय इन श्रोताओं को कैसे पकड़ के रखें, कौन सा चुटकुला सुनाए, कौन सी ऐसी उनकी फायदे की बात सुनाए तो वो उनकी भूख भी वो भूल जाए। अगला पॉइंट है कि सेंस ऑफ ह्यूमर से आप बहुत देर तक श्रोताओं को बांधे रख सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर की, सामने वाले बिल्कुल तैयार ही नहीं है। देखो अभी हम यहां बैठे हुए हैं, ये एक अलौकिक सभा है, आप इतने प्यार से सुन रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाहर हम किसी नए लोगों के सामने सुनाने जा रहे हैं और उनको पता चला रहे वो तो वही है, वही बातें सुनाने वाले। चलो चलो किसी हॉल में नियोजित प्रोग्राम है, वहां पर श्रोता आए हुए हैं, वो आपको जानते हैं कि हाँ ये फलाना स्पीकर है, बहुत अच्छा बोलता है, उनका आपके प्रति, आपके ज्ञान के प्रति बहुत आस्था है, भावना है, और वो बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं आपका। और दूसरी बात कि आप रोड पर प्रदर्शनी लगाई हुई है और वहां पर रास्ते से लोग आ रहे जा रहे, तो उस समय उनको समझाना बहुत अंतर है। तो इस समय सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। एक बार मेरा एक अनुभव है कि पुणे में एक पुराना मंदिर है, पेशवे कालीन मृत्युंजय महाकालेश्वर मंदिर, तो वहां पर प्रदर्शनी हम लगाते थे, तो मैं गया तो वहां पर ना पुणे में जो बुजुर्ग है, पुराने हैं, वो बहुत टोकते हैं। अगर आपसे बोलने में कुछ गलती हुई व्याकरण दृष्टा भाषा की, तो तुरंत पकड़ लेंगे कि आपने अभी क्या बोला, ये गलत है, ये ऐसे बोलना होता है। तो एक तो वो एंटी था ब्रह्मा कुमारी इसके, बुजुर्ग था, और प्रदर्शनी समझाते समझाते मैं सीडी के चित्र पर था, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स से वो बहुत प्यार से सुन रहे थे और वो पीछे से उन्होंने आवाज दी, अरे सतयुग त्रेता की बात राम कब आए, कृष्ण कब आया, उसने उस बात में छेड़ दिया। अभी पता नहीं मुझे तुरंत क्या हुआ, मैंने कहा अजोबा आप है ना बड़े हैं, मैं तो छोटा हूं, आप मुझे बाद में बताना, मेरी जो भी गलतियां होती है ना आप मुझे बाद में बताना, हम बैठेंगे। और उसको पता सचमुच रुक गए कि जो टोक रहे थे कि जो सामने वाले लोग भी जा सकते थे तो उनका भी सुनना हुआ, फिर वो ग्रुप चला गया और वो बुजुर्ग खड़े रहे, फिर मैंने उनके साथ बात की। बात करने से पहले हम मंदिर की तरफ बढ़े और बड़े अभी वो देख रहे थे कि ये लोग तो दर्शन भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, तो मैं भी उनके साथ गया और बड़ी भावना से फूल भी चढ़ाए और माथा टेक पर दर्शन भी किए। ये सब करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि नहीं करना है हमें, क्योंकि सामने वाले को आपको रिगार्ड रिस्पेक्ट देख के पूरी नम्रता के साथ उसकी बात भी सुननी पड़ेगी और हमारी बात उसको सुनानी भी है, ऐसे नहीं कि बस उसका ही सुन के आना है। तो समय और स्थान को देखते हुए सामने वाले पर कितना भी खूंखार क्यों न हो उस पर काबू करना आवश्यक है। फिर हमारे पास सिर्फ गंभीर वातावरण नहीं बना के रखना है, हमारे पास कोई हास्यास्पद प्रसंग और कुछ चुटकुले होनी चाहिए। तो एक हम जो आत्मा का चित्र समझाते हैं पहला कि देखो ये आत्मा है तो ये व्यक्ति जिंदा है, और आत्मा जब चली जाती है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, ये तो क्या है, हड्डी मांस का पुतला है। तो एक गांव में माता यही चित्र को समझा रही थी, देख तुम खाता पीता नहीं है ना, तो आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी और फिर ये हालत हो जाएगी तुम्हारी। तुम तो शराब पीता है ना, तुम तंबाकू खाता है ना, इसकी वजह से ये हालत होती है, बस हड्डियां ही रह गई, देख तुम्हारे भी हड्डियां ही रह गई, अब बस तुम्हारी यही हालत होने वाली, अब तुम भी मरेगा। तो मना चित्र वही है, लेकिन समझाने की बात, वो माता किसी व्यसनी आत्मा को समझा रहे थे कि देख तुम अगर व्यसन करेगा तो तुम्हारी भी ये हालत हो जाएगी, तुम्हारी भी देखो हड्डियां ही बची हुई है। फिर विषय के संदर्भ में ही होनी चाहिए, जो डायलॉग है, शेर शायरी आप सुनाने जा रहे हैं, ऐसे न हो कि मुख्य टॉपिक, मुख्य बात आपको जो सुनानी है वो कहीं साइड में रह जाए और आप उस चुटकुले में और शायरी में ही लगे रहे। फिर वक्ता का उच्चारण जो है ना, उसके ऊपर उसको विशेष ध्यान देना है। उच्चारण अगर स्पष्ट नहीं है तो आपकी खिल्ली उड़ाई जा सकती है, आपकी भाषा जो है उसके ऊपर भी आपका प्रभुत्व होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहना है प्रालब्ध और कह रहे हैं प्रहलाद। कहना है ऑलमाइटी अथॉरिटी और कह रहे हैं कि ऑल टाइम अथॉरिटी। मतलब अच्छा वक्ता वो भी होता है कि अपनी की हुई गलती को वो युक्ति से छिपा भी दे, उसके ऊपर फिर दूसरा व्यंग करके उस बात को कवर भी कर ले। ऐसे नहीं कि सामने वाले को पता चले कि इसकी गलती हुई है, हुई जो गलती हुई है वो ध्यान में आ गई है तो उसको क्विकली क्या करना है, कवर करना है किसी दूसरी बात से। अपनी गलती को मानना नहीं है लेकिन उसको छिपाना है। हाँ, खुद को मानना है लेकिन सामने वाले को पता न पड़े ये मान गया है। तो अगला है, आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज में तालमेल होगा तो भाषण प्रभावशाली हो जाएगा, प्रभावशाली और दिलचस्प, बॉडी लैंग्वेज और शब्द। तो हम देखते हैं कि बाबा के बारे में हमने सुना कि ब्रह्मा बाबा ने एक भी मुरली मिस नहीं की, उसी तरह मम्मा जो मां सरस्वती है, जगदम्बा है, ज्ञान की देवी है, उन्होंने भी कभी मुरली मिस नहीं की है। उन्होंने भी बड़े प्यार से कन्याओं को भी सुनाया कि भाषण कैसे करना है, और वे खुद को अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझती थी। बाबा क्लास कराने के पहले मम्मा का क्लास होता था और उनको जैसे ही आहट महसूस होता था कि अभी बाबा आ रहे हैं तो अपने वाणी को पूर्ण विराम देती थी। कई बार बाबा कहते थे कि मम्मा बोलो, कंटिन्यू करो, उस बात को पूरा करो, लेकिन मम्मा ने कभी भी बाबा के सामने ज्ञान नहीं सुनाया। फिर बाबा को अगर सुनना ही है तो बाबा छिपके से आकर बाहर ही खड़े रह के सुनते थे। तो इससे पता चलता है कि हम कहाँ बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं। बड़े हमारे सामने बैठे हैं और हम बड़ी बड़ी बातें सुनाते जा रहे हैं, तो बड़ों के प्रति एक रिगार्ड, एक सम्मान भी जो वक्ता होता है उसके पास होना चाहिए। फिर मम्मा एक विद्यार्थी कैसे थी कि मम्मा अंतिम समय भले क्लास में नहीं आ सकती थी लेकिन उनके कमरे में साउंड जो लगाया गया था वहीं पर मुरली सुनती थी। लेकिन मम्मा ने कभी बेड पर लेटे हुए मुरली नहीं सुनी। बड़े बताते हैं कि मम्मा तैयार होकर मना बैठ जाती थी बेड पर और फिर मुरली सुनती थी कि मुझे कौन सुनाने आया है, भगवान मुझे मुरली सुनाने के लिए आया हुआ है, हम भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं तो उस समय मुझे बैठकर ही सुनना है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर हमें श्रेष्ठ वक्ता बनना है तो हमें पहले विद्यार्थी बनना है, कि ऐसे नहीं कि मुझे तो सब कुछ आता है, सीखने की हमारी जो सीखने की लला जो ललक जो है वो कायम होनी चाहिए कि मैं तो विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ और मुझे सीखना है। और जिस वक्ता के पास मधुरता है, कोमलता है, वही व्यक्ति दूसरों के दिलों पर राज कर सकता है। कहते हैं ना कि इसकी जिह्वा पर तो जैसे सरस्वती वास करती, कि सामने वाले को अपना बनाना, सामने वाले के दिल पर राज करना, ये एक वार्तालाप का उत्तम नियम है। जरूरी नहीं कि सामने वाला कितना धनवान है, कितना पढ़ा लिखा है, उसका पद क्या है, पोजीशन क्या है, जरूरी नहीं है। एक अच्छा वक्ता उसकी जो प्रॉपर्टी है कौन सी है, मधुरता, नम्रता, वो ज्ञान के सारे खजाने उसके अंदर समाये हुए है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में रखना कैसे है सामने, वही उसका धन है, वही उसकी प्रॉपर्टी है। और वही वक्ता एक जादूगर है जिसके पास मिठास है। फिर है अगला पॉइंट, संक्षिप्तता, बुद्धिमत्ता की पहचान है कि संक्षिप्त हो, किसी विषय को हम इतना लंबा ना खींचे कि सामने वाले बोर हो जाए, शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए। फिर है निर्भयता कि डरना नहीं है, और अगर डर भी गए हैं तो वो सिर्फ आपको पता है कि आप डर गए हो, सामने वाले को बिल्कुल आपके पैर नहीं दिखाई दे रहे कि वो हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे, छिपा लो अपने आप को और दृढ़ता से खड़े हो जाओ, एक लंबी सांस भर लो गहरी, उससे ऑक्सीजन मिलता है अंदर, गहरी सांस लो और दृढ़ निश्चय से खड़े रह जाओ कि डरो मत। डरने से क्या होता है कि हम किसी शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं, हम जब डरते हैं तब क्या होता है, एक ही शब्दों को, एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते हैं, फिर सामने वाले को पता चलता है कि अभी ये ट्रैक से नीचे उतर गई है गाड़ी, तो वो फिर खिल्ली उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो किसी भी शब्दों को बार बार रिपीट नहीं करना है। हमारे हिस्ट्री के सर थे, वो 45 मिनट्स में 250-300 बार एक शब्द को रिपीट करते थे, सर्वसाधारण बने। तो मैं वो जो मार्किंग होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, ताले चखुना, तो उस मार्किंग के द्वारा मैं पिछली पेज पर काउंट करता था, और मुझे एक बार पकड़ा गया क्योंकि उनका ही बेटा मेरे पास में बैठता था, उसने बताया सर आप जो बोल रहे हो ना ये काउंट कर रहा है। उस समय में श्रोता था, वक्ता नहीं। तो वो टीचर बहुत गुस्सा हो गए, उन्होंने मुझे खड़ा किया और पनिशमेंट भी दिया कि अभी आपको पूरी क्लास खत्म होने तक खड़ा रहना है, ठीक है। मना हमें सामने वाले को मौका नहीं देना है कि वो हमारे शब्दों को काउंट करे। फिर उस रिपीट करने में नवीनता है, बाबा शब्द को रिपीट तो करते हैं, ज्ञान धन है, ज्ञान तलवार है, ज्ञान अमृत है, ज्ञान क्या है, संजीवनी बूटी है। तो बाबा शब्द को रिपीट करता है लेकिन उसके साथ विशेषण हजार जुड़े हुए होते हैं। बाबा हमें उस शब्द की गहराई में लेके जाना चाहता है। हाँ, और यहाँ है कि डर के कारण किसी शब्दों को हम बार 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 रिपीट करते हैं। तो ये बात होती कब है, जब हमारी तैयारी नहीं होती या इंस्टेंट टॉपिक हमें मिलता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि तैयारी तो कुछ थी नहीं, और पहली बार मुझे मिला था कि क्लोजिंग का जो भाषण होता है, आभार प्रदर्शन भाषण का, एक जैसे अध्यक्ष का भाषण होता है, जैसे शुरुआत में अनुमोदन देना होता है कि फलाना व्यक्ति, हाँ, तो तो ये जो थैंक्स का जो भाषण है वो मुझे दिया गया था अचानक। कॉलेज में टीचर्स डे था और उस समय टीचर डे के दिन सभी ने पार्टिसिपेंट, मैंने तो कोई भाग नहीं लिया था उस टीचर डे में, मैं तो बस मजा देखने गया था उस दिन, लेकिन अचानक मुझे एक पार्ट भी मिल गया। क्योंकि टीचर नहीं आए तो प्यून भी नहीं आए थे, तो मुझे टीचर ने कहा चलो तुम बेल बजाना, मैंने कहा ठीक है, और बेल बजाते बजाते मेरी उंगली को भी लग गया। तो और लास्ट में अभी भाषण भी उन्होंने कहा ये तो किसी को दिया नहीं, अब तुम्हें ये भाषण करना है। मैंने कहा क्या करना होता है इस भाषण में? उन्होंने कहा कि जो भी अध्यक्ष से भाषण से लेकर जो भी लास्ट तक भाषण हुए हैं उन सब की आपको महिमा करनी है, उसने क्या क्या कहा उसके बारे में बता के क्लोजिंग करना है थैंक यू करके। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास भाषण आया मैं तो पूरा डर गया था, पसीना आ रहा था, लेकिन जैसे ही लंबी गहरी सांस भरी और शुरू हो गया तो उनको, जरूरी नहीं भाषण देने के पहले आपने बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ हो किताबें, जरूरी नहीं है, जो आप रोजमर्रा के जीवन में जीते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो 100% जागरूक होकर सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वो बातें अपने आप उस समय पर याद आती है। तो मुझे ये वो बात याद आई कि देखो भारत का इतिहास है, भारत में हम आज टीचर डे मना रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो राष्ट्रपति थे टीचर थे और वो राष्ट्रपति बने थे। ये भारत का इतिहास है कि एक टीचर राष्ट्रपति बन सकता है, ये भारत का इतिहास है एक पेपर वाला राष्ट्रपति बन सकता है। वैसे ही हमारे देश में विदेश से आने वाली चीजों का बहुत महत्व रखते हैं हम, वैसे ही विदेश में भी एक प्यून टन 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 मैं बनूंगा राष्ट्रपति वॉशिंगटन, है ना। तो वो जो बात थी जो हमारे टीचर ने सुनाई थी वो अचानक याद आ गई और वो बात सुनाते ही इतनी तालियां मिली कि बस। फिर आप क्लोजिंग करते समय अभी क्या सुनाए, तो जैसे न्यूज रिपोर्टर सुनाते हैं, घर में तो टीवी था नहीं तो हम मासी के यहाँ एक बार डेकोरेशन के लिए गए थे, गणपति का डेकोरेशन करने के लिए, और वो लोग न्यूज देख रहे थे। तो उस न्यूज रिपोर्टर ने, मैंने पहली बार देखा था कि बहुत ही अच्छा क्लोजिंग किया था, याज बरोबर आजचं बातमीपत्र इथंच संपलं, मी मृणाली कुलकर्णी, कॅमेरामन सुशीलभाईंसोबत। और वो शब्द इतने गहरे मेरे अंदर चले गए, मैं घर में आया मैं घर में आया और आईने के सामने खड़ा रह के उस लाइन को बार बार रिपीट कर रहा था। माता जी पीछे से आई और एक फटका लगा कि अरे तुम पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, मुझे हेल्प भी नहीं कर रहा है और ये क्या कर रहा है। मुझे किसी ने बताया नहीं था कि एक वक्ता बनने के लिए आपको आईने के सामने खड़ा होकर के प्रैक्टिस करनी है। नेचुरली अंदर से आ रहा था। तो वो जो पहले दिन घटी हुई घटना थी वो दूसरे दिन मुझे भाषण में यूज करने को मिले। तो वह क्लोजिंग हो गया। इसी के साथ आज का ये मीठा प्रोग्राम यही खत्म होता है। मैं बी के कमलेश और कल मिलेंगे सुबह ठीक 7:30 पर। तो इतनी तालियां पड़ी, इतनी तालियां, सब टीचर्स देखते ही रह गए। वो बायोलॉजी के टीचर ने तो मेरे ऊपर एक पोएम बनाई, कविता बना दी। दूसरे दिन मैं जब कॉलेज में गया तो पता लगा कि अभी मुझे इंटरनल मार्केट टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक भाषण में वो खूंखार टीचर पे पकड़ में आ गए थे और सचमुच इंटरनल मार्क्स तो बहुत अच्छे मिले मुझे उस भाषण के कारण। कि सामने वाले जब अपने होते हैं तो उन्हें अपना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने बहुत खर्चा किया हुआ है, कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं, किसी वक्ता को बुलाया है, हम आयोजक हैं और सामने वक्ता ही, सामने जो श्रोता है उनको इकट्ठा करना है, वो भी एक कला है। मानो हम शिवरात्रि की सेवा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, पैम्पलेट छपवाने पड़ते हैं और हम क्या करते हैं उसके साथ साथ गांव में रिक्शा घुमाते हैं, बहुत अच्छा एक ऑडियो तैयार करते हैं, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं कि ऐसे ऐसे महाशिवरात्रि के निमित्त ऐसे ऐसे आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, एक आकर्षक मैटर तैयार करते हैं कि धरती पर आए शिव भगवान। तो हम ये जो अनाउंसमेंट करते हैं वो भी बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए। इसी तरह एक अनुभव ये है कि मोटरसाइकिल रैली होने वाली थी और उसी लिए हमारे सेंटर को चुना गया था ट्रायल करने के लिए कि अगर कुछ गलतियाँ होती है, मिस्टेक होती है तो क्या होती है। तो जोन से टीम आ गई और सेवा शुरू हो गई। मोटरसाइकिल रैली थी, कौन से गांव में हम दिन में पहुंचेंगे, कौन से गांव में दोपहर में पहुंचेंगे, कौन से गांव में शाम को पहुंचेंगे, सुबह में पहुंचेंगे तो कहाँ स्कूल कॉलेज में जाएंगे, किसी ऑफिस में जाएंगे, है ना। ये सब तैयारियां हो गई। लेकिन एक गांव में क्या हुआ, दूसरे गांव में जाते जाते थोड़ा देर हो गई और देर होने के कारण वहां के जो आयोजक थे उन्होंने बताया कि आपको आना है तो आरती के बाद पहुंच जाना, आपको सारे मंदिर में लोग मिलेंगे। लेकिन वहां हम लेट पहुंचे, रैली मोटरसाइकिल रैली लेट पहुंची। तो वहां जब पहुंचे तो अब सभी लोग घर जा चुके थे, तो मंदिर के पुजारी ने बोला कि आप शुरू करो, ये जो श्रोता है ना ये विजिबल नहीं है, आपको दिखाई नहीं देंगे, वो अब अपने घर में सुनेंगे, ये जो साउंड लगाया हुआ है उनके घर तक आवाज जाती है, तो अभी कैसे शुरू करे प्रोग्राम। तो बड़े बहन जी ने एक युक्ति लगाई, जो एक छोटी बहन थी उनके साथ, उनको बुलाया और बोला आप गीत गाओ, अभी श्रोताओं को इकट्ठा करना है तो कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि आप भक्ति गीत गाओ। तो इन समय पर सामने श्रोता ही नहीं है, उनको इकट्ठा करना है तो उसके लिए क्या क्या करना है। तो उस बहन ने इतना अच्छा गीत गाया कि उस आवाज से सारा गांव खींचा हुआ उस मंदिर के सामने खड़ा हो गया कि आप कहां जा रहे, किस स्थान पर जा रहे। उनकी भाषा में आपको कुछ बोलना आता है, गीत आता है, तो आप वहां पर समय पर प्रस्तुत करेंगे। तो देखो देखते देखते गांव इकट्ठा हो गया और आगे हम वो जो रैली थी मोटरसाइकिल रैली, वो जो उद्देश्य था शिव संदेश देने का, उसमें सफल हो गए। तो यहां बाबा का हर बच्चा एक वक्ता है, एक स्पीकर है। कल भी हमने सुना हिस्ट्री हॉल में कि दीदी जी, मनमोहिनी दीदी जी कैसे एक एक स्पीकर उन्होंने बनाए। जो भी अभी यज्ञ में स्पीकर्स है वो अपने अनुभव सुनाते हैं कि दीदी ने उनको कैसे तैयार किया, भले वो छोटे भी थे, छोटे बच्चों के सामने भी कैसे बोलना है कि वो भी कैसे तैयार हो जाए। तो दीदी ने सुनाया कि उनको दीदी, मनमोहिनी दीदी ने एक सेवा दी थी, कैसेट मतलब गीत बजाने हैं और उसके साथ साथ स्पीकर में ने क्या बोला वो दो पॉइंट लिख के लाने हैं। तो उन्होंने कहा दीदी आप रोज रोज मुझे क्यों बताती हो, पॉइंट लिखने के लिए क्यों बोलते हो, वही तो बातें होती है। तो फिर दीदी ने कहा नहीं, वो स्पीकर ने ठीक सुनाया या नहीं सुनाया मुझे कैसे पता चलेगा, तुम तो बताएगी ना। तो मैंने छोटों को भी बड़प्पन देखे। फिर दीदी उनको कहती थी कि बताओ, एक्टिंग करके बताओ फलाने स्पीकर ने कैसे सुनाया। तो मैंने छोटे बच्चों को बड़े रमणीकता से नियम मर्यादाएं सिखानी भी है, लेकिन कैसे गंभीरता ही नहीं तो नम्रता के, सॉरी उनके साथ रमणीकता के साथ बच्चों को भी कैसे सुनाना है। वैसे मेरी शुरुआत भी ऐसे ही हुई, मैंने जो पहला भाषण किया था तो मुझे एक रुपया बख्शीश मिला था। तो बहन जी ने कहा वो नवरात्रि का खुला मंच था, आज भी मिलेगा ठीक है। तो नवरात्रि का वो खुला मंच था और वहां पर सभी बच्चे इकट्ठा होके उनको माइक पकड़ाया जाता था, बताओ कुछ स्टोरी बताओ, भाषण करो। तो बहन जी ने मुझे बताया था मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, कैसे भाषण करना है। भाषण किया और तालियां भी मिली और एक रुपए का कॉइन भी मिला। मैं तुरंत भाग के बहन जी के पास गया। बहन जी ने कहा शाबाश, देखो बख्शीश मिला ना, अभी एक आठ आने का चॉकलेट ले लो और आठ आने बाबा के भंडारी में डालना। तो अभी कैसे क्या करूं, कॉइन तो एक ही है, चॉकलेट भी लेना है, ये भी करना है, तो मैंने जाके भंडारी में डाल दिया। तो ये है छोटी सी शुरुआत कि आप सामने वाले की प्रशंसा भी करें। जो वक्ता है उसका उमंग उत्साह भी बढ़ाना है, और उससे क्या होगा कि सामने वाले का उमंग उत्साह बढ़ेगा, और जो गलतियां है वो भी आपको बतानी है लेकिन प्यार से। ऐसे नहीं कि वो फिर कभी माइक में पर आए ही नहीं, सामने आए ही नहीं। तो ये सब बातें थी कि भाषण प्रभावशाली कैसे हो, शुरुआत कैसे प्रभावशाली हो और एंडिंग भी कैसे प्रभावशाली हो। तो ये पॉइंट फिर से रिवाइज करते हैं। पहला है कि पहले 5 मिनट में सबको अपना बना लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट, न केवल हम वक्ता हो बल्कि हम स्वयं श्रोता भी बने, गुड लिसनर। तीसरा पॉइंट है, जो हम बोल रहे हैं उसके हम अनुभवी हो। जो बातें हम बोलने जा रहे हो सुनी सुनाई बातें नहीं बोलनी है, जिससे हम खुद ही पकड़े जाएं। टॉपिक चौथा है, टॉपिक के विषय पर पूरी जानकारी हो। छठा पॉइंट है, अधिक से अधिक समय तक श्रोताओं को बांधने का तरीका हमारे पास होना चाहिए। सातवा, व्याकरण में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आठवा, समय स्थान परिस्थिति के अनुसार भाषण हो तो दिलचस्प होगा। नौवा, गंभीरता के साथ रमणीकता जरूरी है। दसवा पॉइंट, वक्ता को उच्चारण जो है उसका स्पष्ट होना चाहिए। ग्यारहवीं पॉइंट, अपनी की हुई गलती को युक्ति से अच्छी बात में परिवर्तन कर लेना चाहिए। बारहवा, बॉडी लैंग्वेज व शब्दों का तालमेल होना जरूरी है। तेरहवा, बड़ों के प्रति रिगार्ड होना अनिवार्य है। चौदहवा, सीखने की ललक कायम रहनी चाहिए। पंद्रहवा पॉइंट, वाणी में माधुर्य होना चाहिए। सोलहवा, भाषण संक्षिप्त होना चाहिए। सत्रहवा पॉइंट, किसी भी हालत में डरना नहीं है। अठारहवा पॉइंट है, शब्द नई तरीके से रिपीट हो, माना शब्द रिपीट ना हो लेकिन उसके साथ उसके विशेषण बदलते जाए। बीस, भाषण क्लोजिंग के समय सारा भाषण शॉर्ट में दोहराया जाए। 21, आधुनिक तरीके से भाषण समाप्ति हो। 22, भाषण में जिन जिन की सहभागिता होती है उनको भी पूरा सम्मान देना चाहिए। कौन आयोजक है, कौन स्पॉन्सर है उसका स्पॉन्सर है, और जो सामने बैठे हुए श्रोता है उनको थैंक यू अवश्य कहना है। माइक लगाने वाले, गीत बजाने वाले, रिकॉर्डिंग वाले, उन सबको थैंक यू कहना है। हाँ, वो श्रोता जिन्होंने सुना। तो 23वां है, समय का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। 24, आवाज में आकर्षण होनी चाहिए। 25, सबके भाषण को ध्यान से सुनकर कुछ न कुछ सीखना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।